और हजार करोड़ महोग। अच्छा अब बंदरों की संख्या बताते हैं, बंदरों की संख्या कितनी है कि 1,000 करोड़ 100 शंकु, 1,000 महाशंकु, 100 वृंद, 1,000 महावृंद, 100 पद्म, 1,000 महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महोग और करोड़ महोग। इस प्रकार से ये इतने बानर लिए हुए राम जी महाराज आपके लंका के अंदर आ रहे हैं। अभी तक लंका में जो बंदर आए हैं पुल के ऊपर भी उतना ही है और पुल के पीछे प्रश्रवण पर्वत पर भी उतना ही है। प्रश्रवण पर्वत से पीछे भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और इस प्रकार से ये अभी बंदरी सेना अभी आई भी नहीं है, ये आपके लंका में चारों तरफ छा गई है। शुक ने सारण ने ये सब बात रावण से बताई। राम जी महाराज किस प्रकार से लक्ष्मण के साथ, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ आपस में बैठ करके बात करते हैं, सब बात बताई। अंगद का भी बल बताया, हनुमान, जामवंत, सुसेन, कुमुद, नील, नल, गज, गवाक्ष, इन सब के विषय में बताया और कहा कि महाराज आप इस सेना का पार नहीं पा सकते, इतनी संख्या तो मैंने गिनी है, इसके अलावा अनगिनत कितने हैं इसका हमको पता नहीं है। रावण ने कहा नतावत सदृशम नाम सजीव उपजीवी भी, अये सुक और सारण तुमने इतनी बड़ी बानरों की बात कहकर के हमारा महान अप्रिय कार्य किया है। जो व्यक्ति शत्रुओं की प्रशंसा करता है, जो व्यक्ति शत्रुओं को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, वो स्वामी का बड़ा अपराध करता है। तुम लोगों ने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है, तुम लोगों ने राजनीति का शास्त्र नहीं पढ़ा है, तुम लोगों ने ये नहीं विचार किया कि हम जिसकी रोटी खाते हैं उसके दिल में हम क्या भावना पैदा करते हैं। तुमने जो कुछ कहा है, यदि तुम्हारे प्रेम को याद न करूं तो मैं तुम्हें अभी प्राण दंड दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे वचन को सुनकर के हमारे मन में शत्रु के प्रति भय पैदा होता है, ये भय तुमने पैदा किया है। तुम हमको मृत्यु का भय दिखाते हो, हम मृत्यु से नहीं डरते सुखसारण, ये मृत्यु हमसे डरती है, इसलिए तुम किसी भी प्रकार से हमें कुछ नहीं कह सकते, तुम हमको डरा नहीं सकते हो। यदि पूर्वोपकारेर में क्रोधो न मृदुताम व्रदेत, तुम्हारे पहले के बहुत उपकार हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा तुम्हारे प्रति शांत हूं, चले जाओ यहां से, मैं तुम दोनों का मुख देखना नहीं चाहता। सुक और सारण ने कहा महाराज की जय हो, वहां से रवाना हो गए। अब दशग्रीव ने महोदर से कहा हे महोदर गुप्तचरों को यहां बुलाओ। गुप्तचरों को बुलाया, चार गुप्तचर आए और उन गुप्तचरों को बुलाकर रावण ने कहा गुप्तचरों चुपचाप यहां से तुम राम की सेना में जाओ, किसी को भी पता न चले। तुम ये मालूम करो कि राम कब सोता है, कब जगता है, कब क्या करता है, और इस प्रकार से तुम काम करना कि तुमको कोई न पहचाने। गुप्तचर को कभी दूसरों में प्रवेश करना पड़ता है, वहां छोटे से छोटे काम करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चारेण विदित शत्रु, राजा होता है वो गुप्तचर के द्वारा शत्रु का ज्ञान करता है, इसलिए तुम जाओ और शार्दूल को तुम आगे रखो और तुम जाओ। तो अच्छा महाराज, उन्होंने रावण की आज्ञा से राम की सेना में प्रवेश किया। उस समय में राम लक्ष्मण सब सुबेल पर्वत पर आ गए थे और उस सुबेल पर्वत पर सुग्रीव, विभीषण, राम लक्ष्मण और ये और भी उनके श्रेष्ठ श्रेष्ठ बानर वहां सोच रहे थे कि अब हमको आगे क्या करना है। उसी समय में विभीषण ने थोड़ी सी अचानक ही दृष्टि पीछे की, क्योंकि उनको गंध आने लगी, ये कोई राक्षस है उसकी गंध आ रही है। बंदरों के बीच में राक्षस, थोड़ा सा विभीषण ने पीछे देखा, ए शार्दूल ओयम, ये शार्दूल नाम का राक्षस बंदर बन करके आया है। तो उसी समय बंदरों ने उसको पकड़ लिया, राम जी ने कहा कि देखो पकड़ तो लिया करो और थोड़ा बहुत कोई प्रसाद दे तो कोई बात नहीं है, उसको पूरा जान से नहीं मारना, ये ठीक नहीं है। पर राम जी महाराज ने जैसे तैसे उनको छुड़ा दिया और वे लंबी लंबी स्वसंता है लंबी लंबी सांस लेके, क्योंकि पिटाई हो गई थी, लंबी लंबी सांस लेकर के और वे रावण के पास आए। रावण ने पूछा क्या बात हुई, कि महाराज पहले सुस्ता लेने दो हमको, उसके बाद कहेंगे। तब उन्होंने सारी बात कही कि महाराज वो सुबेल पर्वत पर आ गए हैं, एक तरह से लंका की छाती पर आ गए हैं। रावण ने देखा कि ओहो सुबेल पर्वत पर वे आ गए। रावण ने पूछा शार्दूल से कि शार्दूल यथावत चते वर्ण है, क्या बात है मुंह उतर गया और तुम्हारे शरीर में जगह जगह मिट्टी लगी हुई है, कहीं कहीं तुम्हारे नीले नीले दाग पड़े हुए हैं, कहीं पर तुम्हारी चमड़ी छिली हुई है, क्या तुम्हारे पर शत्रुओं ने क्रोध कर लिया था क्या? तो शार्दूल ने कहा कि महाराज कोई बंदर तो आपके पास नहीं बैठा है ना, बंदरों का बड़ा डर लगता है। महाराज हम तो आपके कहने से वहां गए, लेकिन वहां हम क्या किससे पूछें कि कितना बल है, कैसे सोते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये बंदर तो किसी को फटकने न देते, पूछने नहीं देते, क्या सांस नहीं देने देते, वो किसी से बात ही नहीं करने देते। ये बंदर अपनी ढंग की बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, और इनके पास में हम यदि हमारी भाषा से बात करें तो उसी समय पहचान लेगी तुम्हारी भाषा ऐसे, तुम कहां के हो भाई। इसलिए महाराज हम तो प्रवेश किए इतने में पकड़े गए, जिस प्रकार से कोई तार का संपर्क करे और बिजली का करंट आए, ऐसे महाराज हमको तो वहां पर गए, हमको तो पहचान लिया। फिर जानु भीर मुष्टि भीर दंतैर तालैर अभिहता, मुझे तो महाराज उस समय लातों से मारा और डुक्कों से मारा, घूसों से मारा और फिर दांतों से मारा और फिर महाराज हमको पटक करके हमको गोडों ही गोडों से मारा और फिर एडी एडी से मारा, पीठ में बहुत एडियों से लगाया। तो मैं जैसे तैसे राम जी का नाम लिया और मुझे राम जी ने कहा छोड़ दो छोड़ दो, राम की आज्ञा ऐसी चलती थी महाराज, इतना तो क्रोध था बांदरों में, लेकिन राम जी ने कहा नहीं क्रोध नहीं, इसको मारो मत, उसी समय रुक गए। तो नीतो हम राम संसदी, उन्होंने क्या किया, मुझे बांध दिया और बांध करके और फिर राम जी के सामने हमको ले गए, राम जी के सामने ले गए और पूछा सच्ची सच्ची बता तुम कहां से आए हो, किस लिए आए हो, नहीं तो हम तुम्हारा प्राण ले लेंगे। इस प्रकार से वो कहने लगे तो मैंने तो कह दिया कि मैं तो रावण का दूत हूं और आप लोगों को देखने के लिए आया हूं। तो कहा अच्छी बात, राम जी ने कहा दूत है भाई छोड़ दो, तो राम जी के छोड़ने से आया हूं। महाराज एक बात कहूं, क्या बात, सीता दे दो ना, ये कलह मिटे, सीता वापी प्रयच्छा सुन, आप सीता दे दीजिए महाराज जी, कलह आपकी मिट जाएगी। शार्दूल की बात सुनकर के रावण ने कहा जो भी कोई वहां जाता है और वो नया नया पाठ पढ़ करके, 5:30 बज रहे हैं, अच्छा जो भी वहां जाता है इन बांदरों का पक्ष लेकर के आता है और यही आके हमको शिक्षा देता है, आप संधि कर लो, आप ये कर लो, हमने हमको क्या करना है, इसके लिए आपको नहीं भेजा है, आपको जिस काम के लिए भेजा है वहीं तक आप विचार कीजिए, गुप्तचर का काम केवल गुप्तचरी करने का है। शार्दूल ने कहा कि महाराज आपने मुझे पूछा था कि तुम जरा उनका बल लेकर के आओ, तो महाराज रींचराज गदगद का बल कौन बता सकता है और सुसेन का बल कौन बता सकता है, नील का बल कौन बता सकता है, मैंने तो थोड़ी देर के अंदर वहां 1,00,000,000,000,000 बांदरों को युद्ध के अंदर एक साथ विचार कर देखा, ये एक साथ जो है टूट पड़ेंगे। इसलिए महाराज श्वेत ज्योतिर्मुख हेमकूट नल दुर्धर बड़े ये विचित्र जो है ये बंदर हैं, ये सेना में इस समय अग्र पंक्ति में खड़े हुए हैं, सबसे पहले ये लोग ही आपके साथ युद्ध करेंगे। इधर रावण ने उनको भेज दिया और अपने मंत्रियों को बुलाया। अब एक बड़ी विचित्र कथा है, अपने मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा कि आज एक बहुत गुप्त रूप से मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए उन्होंने सभा भवन में सबको बुलाया और बुला करके गुप्त चुपचाप मीटिंग की और मीटिंग करके और कोई विचार विमर्श करके सबको भेज भी दिया। भेज देने के बाद रावण अपने महल में बैठा हुआ था। अब भाई कोई आवाज नहीं करे, बहुत विचित्र कथा है। वहां पर विद्युत जिम नाम का एक माया को जानने वाला राक्षस का बड़ा मित्र था। राक्षस ने कहा, ए विद्युत जिम, एक काम करें, ये राम की सेना सुवेल पर्वत पर आ गई है। राम की सेना का जो बल है वो जब सीता के पातिव्रत्य से ज्यादा है। सीता का जो पातिव्रत्य है इस कारण से सेना को बड़ा बल मिला हुआ है। एक काम करें, तुम माया से एक राम का सिर बना करके लाओ और वो सिर कटा हुआ सिर लाओ और सीता को हम दिखाएंगे। देखो सीते, ये सिर राम मारा गया है, राम का सिर है, ये हम तुमको बता रहे हैं ऐसा करके। और सीता को हम राम को जब मरा हुआ बता देंगे तो सीता को हम स्वीकार कर लेंगे और जब सीता हमारी हो जाएगी उसके बाद राम अपने आप ही वहां से चले जाएंगे, उनका सीता से मन हट जाएगा। अरे सीता जब हमारी नहीं रही, अब अपने को सीता प्राप्ति का लालच छोड़ देना चाहिए, राम चला जाएगा। विद्युत जिम ने कहा, ठीक है महाराज, ये काम तो मैं कर दूंगा। विद्युत जिम ने जाकर माया के द्वारा बहुत अच्छा राम का जैसा का वैसा सिर, वैसा ही बाल, वैसा ही मुख, वैसा ही सब कुछ बना करके उपस्थित किया। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण ने उसको अपना हार दे दिया, ले जाओ और देखो मैं अब अशोक वाटिका में जाता हूं, वहां जाकर मैं तुमको बुलाऊंगा, तब तुम उपस्थित होना और उपस्थित होकर के और तुम जो है ये सिर वहां पर दे देना। वहां पर बहुत सी राक्षसियां हैं ही, उस समय उपस्थित करने पर तुम ये सिर बता देना। रावण अशोक वाटिका में गया। अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोलने लगा। लोगों ने भी अचंभा किया, अकस्मात कैसे आए। वहां रहने वाली राक्षसियों ने सीता को जाकर सुनाया, ए सीते, ये संसार नाशवान है, इस संसार में जो पैदा हुआ वो मरने वाला है। देखो हमने तो हमारे जीवन में बहुत मृत्यु देखी है सीते, 14,000 सैनिक हमारे मारे गए और खरदूषण मारा गया, तो क्या हो गया भाई, एक न एक दिन सबको मरना तो पड़ता ही है। और सीते देखो, ये तुम्हारा राम यहाँ पर लंका की तरफ आया तो था, लेकिन यहाँ आकर के वो शोक के अंदर मर गया ये। और देखो यहाँ क्या हुआ कि वो लंका में घुसा, बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और आकर के, और हे सीते हे सीते हे सीते कर मूर्छित हो गया। मूर्छित हो जाने के बाद उसकी आंख लग गई। इतने में ही मेरे सैनिक एक साथ बांदरों की सेना के ऊपर टूट पड़े। किसी ने किसको मारना चालू किया, तो प्रहस्त जो हमारा सेनापति है, बड़ा बलवान है तुम जानती हो, उसने अपने हाथ में तीखा खड्ग लेकर राम के सिर के ऊपर जोर से प्रहार किया। राम का उसी समय में सिर कट गया। लक्ष्मण भी मारा गया, सुग्रीव को भी मार दिया, हनुमान मारा गया, जामवंत मारा गया, महेंद्र और द्विविध ये भी मार दिए गए, कुमुद को भी गुड़का दिया, अंगद मारा गया और भी जितने जितने बानर थे उन सबको मारा। केहों को तो वहां पर बुरी तरह से घायल किया। उन लोगों ने हाथ जोड़े, बचाओ बचाओ, हम बाबा लंका से जाते हैं। तो वो वापिस चले गए, जैसा उन्होंने पुल बनाया था उस पुल से भी वापिस जाने लगे। केहों को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार से सारी सेना तहस नहस हो गई। अरे कोई है? हाँ महाराज। अरे विद्युत जिम को बुलाओ। तो उसी समय में विद्युत जिम आया। ओ विद्युत जिम, लाओ लाओ राम का सिर लाओ। ये लाया महाराज। वो लाकर के राम का सिर दिखाया। देखो तुम्हारे सामने हम प्रमाण बता रहे हैं, ये राम का सिर है, जानते हो, ये देखो धनुष है, ये बाण है, देख लो। अब नहीं हो तो तुम्हारे सामने पड़ा है। इसको देख करके सीता ने बड़ा दुख किया। सीता ने कहा, अरे ये तो राम का ही सिर है, ओहो ये सिर तो राम का ही है। सिर को लेकर के सीता पछाड़ खार के गिर गई। हे केकई, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। हे केकई, मैं भी मर गई और लक्ष्मण जी भी मर जाएंगे और अब तो कौशल्या भी मरने वाली है। अरे लक्ष्मण तुम क्यों मरे, तुमको नहीं मरना था, कम से कम तुम एक तो अयोध्या में जाकर सब समाचार तो सुनाते। हा हा तो उसमें मारी गई, मेरे मरने से कितना बड़ा भारी सबका मरना हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा यदि राम के साथ विवाह नहीं होता तो आज राम के ऊपर आया हुआ संकट मिट गया होता। मेरे कारण से आज राम के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है। मेरी सासू जी जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं, वे सासू जी कैसे जिएंगी। अनृतम वचनम तेषाम अल्पायु रसीस राघव है। ओहो, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा था कि हे राम तुम्हारी आयु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन ज्योतिषियों की बात आज झूठी हो गई। हे राम आप तो सत्य प्रतिज्ञ थे, आप पितृ भक्त थे, आप श्रेष्ठ पुरुषों में माने जाते थे, आप अपने पिता के साथ इस समय बैठे होंगे। ओहो, बड़े बड़े राजाओं के बीच में आपकी बात हो रही होगी, आप अपने पूर्वजों में बैठे हुए होंगे। उस समय में दशरथ जी आपको कहेंगे, बेटा 14 वर्ष के बाद तुमने अयोध्या में लौटने की बात मेरे सामने कही थी, तुम बीच में ही कैसे आ गए। और हे राम जब तुम रवाना हुए थे तो तुम्हारे साथ में सीता भी थी, लक्ष्मण भी था, लेकिन तुम सीता और लक्ष्मण के बिना अकेले ही यहाँ स्वर्ग में कैसे आ गए। हे राम आप इनका क्या जवाब दोगे। ओहो, आप स्वयं पहले अपने हाथों से अग्निष्टोम आदि यज्ञ करके अग्नि को प्रज्वलित करते थे, आज आपके शरीर को दूसरे लोग अग्नि लगाएंगे। ओहो, ये सब काम मेरे कारण से हुआ, अब मैं कौन सी यहाँ रहूंगी। रावण जिस चिता पर राम का शरीर जल रहा है वहां पर मुझे भी जला दो। राम देखो, मैं देखो देखो रावण, रावण तुम जो है मुझे अपने पति के साथ मरने दो, मुझे अपने पति के साथ मरना है। राक्षस दास ने जब ये बात सुनी, देखो भाई ये धनुष भी उसी का ही है सीता, देख तो लो। हाँ, धनुष भी वही है, बाण भी वही है, अब धनुष को बाण को राम के शरीर को और मुझको सबको एक साथ तुम जला दो। महाराज की जय हो। अकस्मात एक आवाज आई, बोलिए क्या बात है। महाराज बहुत जल्दी किसी काम से प्रहस्त सेनापति ने अभी हमको आदेश दिया है कि हम महाराज रावण से सभा भवन में एकांत में विशेष बात करने के लिए बुलाए, वो बात करनी है, महाराज की आज्ञा लेकर आओ। क्या बात है, वो विशेष बात किसी को बता नहीं सकते महाराज, बहुत जरूरी काम है, आप अभी के अभी पधारिए। मैं अशोक वाटिका में हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि या तो हमको अशोक वाटिका में आने की आज्ञा दीजिए या फिर आप सभा भवन में पधारे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी बात, अभी आते हैं। इतने में ही रावण वहां से रवाना हुआ, विद्युत जिम्ब चला गया, राम जी का वो मायामय शरीर, वो सिर बनाया, वो सिर भी गायब, धनुष भी गायब और बाण भी गायब, और बड़े बड़े राक्षसों का बाहर बड़ा भारी क्रंदन हो रहा था और वो सब भेरी नाद कर रहे थे, घबराए हुए बोल रहे थे। इस समय में रावण अपने सभा की ओर गया हुआ था। सीता के पास में एक शर्मा नाम की राक्षसी थी, वो सीता का त्रिजटा के समान बहुत स्नेह रखती थी। वो पीछे पीछे वृक्ष के पीछे खड़ी खड़ी सब माया देख रही थी। रावण के सामने तो कुछ नहीं आई और उसके बाद वो वहां से छिप करके, और जब रावण चला गया सीता के पास आई। सीता बेहोश होकर रो रही थी, सीता के पास, सीता के शरीर पर हाथ लगाती हुई और उसके भुजाओं को सहलाती हुई, सिर को सहलाती हुई बहुत प्रेम से बोली, सखी थोड़ा धैर्य रखो, अपने मन में व्यथा मत आने दो। हे सखी देखो आप डर गई हो, मैंने सब बात देख लिया है। देखो सखी रावण की इस माया से भयभीत मत हो, राम जीवित है। सखी मेरे पास अनेक प्रकार की शक्ति है, मैं आकाश में अदृश्य होकर जा सकती हूँ। मैंने अभी जब तुम्हारे सामने रावण ने माया से राम का सिर दिखाया तो एक बार मैं भी उसको कुछ सत्य सी मानी, पर मेरे भीतर विश्वास नहीं हुआ, मैं उसी समय में उत्तीर्य मैं यहां से उड़ करके और सुवेल पर्वत पर गई और वहां राम को अपने मंत्रियों के साथ लक्ष्मण के साथ खूब आराम से बात करके देखी और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपके पास आ गई हूँ। और वो देखो माया का सिर भी गायब हो गया, धनुष भी गायब हो गया, बाण भी गायब हो गया। चिंता मत करो, देखो ये जो बाहर आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें राक्षसों के ऊपर बड़ा भारी भय आ गया है। आपकी कहते हैं हमने सबको मार दिया, उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, एक को भी नहीं मारा है। सीते अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ है, अभी तो बांदरों की सेना आई है। इतने में ही रावण के सेनापति घबरा चुके हैं। घबराते हुए वे विशेष बात करने के लिए रावण को सभा भवन में बुलाए हैं। प्रहस्त सेनापति स्वयं भीतर से उखड़ चुके हैं और वे अब विचार करने की हमको क्या करना चाहिए। रावण ने तो केवल एक माया फैलाई ताकि रावण आपका दिल जीत। ये देखो सीता, ये देखो घंटों की आवाज, ये देखो ये तुरियों की आवाज, ये क्या है, ये राक्षस लोग सब सभा भवन में जा रहे हैं। सीता जी ने कहा कि सुर में तुम एक काम करो, तुम यहां से चुपचाप सभा भवन में जाओ, सभा भवन में क्या बात हो रही है वो बात मुझे सुनाओ, तब मुझे शांति मिलेगी। अच्छी बात है, अभी मैं जाती हूँ और अभी जाकर के मैं आपको ये सारी बात सुनाती हूँ। वो सुरमा गई और जाकर के महल में जाकर सभा भवन में जाकर चुपचाप सब बात सुनकर के हे जानकी, मैंने सब बात सुन ली है। वे सब बड़े घबराए हुए हैं, रावण का चेहरा एकदम उतरा हुआ है और रावण के सैनिक मिथ्याई उसको प्रोत्साहित करते हैं। और देखो वो बार बार सोच रहे हैं सेना आ गई, अब क्या होगा, राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, सुग्रीव आ गए, सब बानर आ गए, ये सब देख करके सब बुरी तरह से डर रहे हैं। जनन्या राक्षसेंद्रो भाई, उस सभा के अंदर आज तो राक्षस राज की माँ भी बैठी हुई थी। उस माँ ने आज भरी सभा में जो रावण को फटकार लगाई है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटे कहने के लायक नहीं है, जो दूसरे की स्त्री को यहाँ लाकर और इतना बड़ा लंका के ऊपर तुमने संकट के बादल छवाए, तुम राजा के अधिकारी नहीं हो, तुम राज्य के अधिकारी नहीं, तुमने अपने पूर्वजों की चली आ रही कीर्ति को भ्रष्ट किया है। तुम्हारे सब पाप ही पृथ्वी सह सकती है, लेकिन दूसरे की स्त्री का हरण करके तुमने जो पाप किया उसको ये धरती कभी नहीं सहन कर सकती। ऐसे ऐसे उसको फटकारा है और दूसरे लोगों ने भी बहुत फटकारा है। बड़े बूढ़े मंत्रियों ने बड़े शालीन ढंग से उनको समझाया है, आप सीता को दे दीजिए, सीता को दे दीजिए। सब लोग, वो जो बंदर आया था उस बंदर का उदाहरण लेके कहते हैं, एक बंदर ने तुम्हारी नाक काट ली थी, अब इतने बंदर हैं, ये बंदर जो हालत तुम्हारे करेंगे उसकी तुम्हारी क्या दशा होगी। सीता जी ने कहा, सुरमे तुमने मुझे जीवित कर दिया, सुरमे आओ और तुम मेरे छाती से लग जाओ, इस समय मुझे बड़ी शांति मिली है और सुरमे तुम्हारे मिलने से मेरा सारा शोक दूर हो गया, मैं आनंद के आंसू बहा रही हूँ। सुरमे तुमने मुझे नया प्राण दे दिया, हे सुरमे तुम मेरी सखी हो, तुम मेरी बड़ी आत्मी हो। इस प्रकार से सीता जी आनंद के आंसू बहाती हुई अब आगे की घटना की प्रतीक्षा करती है। राम कथा प्रसंग में हम लोग भगवान के साथ लंका के सुवेल पर्वत पर पहुंच चुके हैं। वाल्मीकि जी महाराज का प्रत्येक विषय का वर्णन बड़ा सजीव है। जिस किसी विषय का वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं मानो साक्षात ये अभी हो रहा हो। जब वे प्रकृति का वर्णन करते हैं तो उस समय में मन में ये भावना बनती है कि कैसी प्राकृतिक छटाएं हैं जो वाल्मीकि जी महाराज ने अपने समय में देखी है। इसके साथ साथ जब वे युद्ध का वर्णन करते हैं तब तो मानो एक एक का युद्ध वे आंखों से देख देख के लिखते हो करते हो ऐसा प्रतीत होता है। जब कभी कारुणिक प्रसंग में चलते हैं तो वाल्मीकि जी के रामायण में पत्थर का हृदय भी रो पड़ता है। जब हनुमान जी के चातुर्य की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा राजनीति का ज्ञान वाल्मीकि जी को कैसे हुआ। जब वाल्मीकि जी के रावण बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने अभिमान में कैसे लिख गए। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद सुनने के बाद बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुनते हुए पढ़ते हुए देखा है कि वाल्मीकि जी ने राम जी का जो वर्णन किया है वो एक सामान्य मनुष्य के चरित्र को लेकर किया है। वाल्मीकि रामायण में भगवान की भगवत्ता का वर्णन बहुत कम है, नहीं के समान ऐसा मानते हैं। और तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में भगवान राम तो राम ही है। रामायण लिखने वाले बहुत हैं, रामायण शतकोटि अपारा, परंतु इनमें सबकी तुलना नहीं करनी चाहिए। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें बड़ा अपराध लग जाएगा। यदि कहें कि तुलसीदास जी की रामायण बड़ी सरल है, छोटी है, संक्षिप्त है और भक्ति के रस में डुबा देने वाली है तो ये इतना तो कह सकते हैं। परंतु यदि यह कहें कि वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी महाराज की रामायण से थोड़ी छोटे दर्जे की है तो यहां अपराध बन जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि जी का लिखने का उद्देश्य दिशा कुछ और है। वाल्मीकि जी से पहले कभी किसी ने श्लोक बनाए नहीं थे, कविताएं बनाई नहीं थी। तुलसीदास जी महाराज के जमाने तक आते 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 कितने ही तो पुराण लिख दिए गए, कितने ही और बातें हो गई, बहुत कुछ लिखावट आ गई। इसीलिए ये आदि काव्य है, महाकाव्य है। कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में और किस समय में जो लिखता है बोलता है वो बात देखनी चाहिए। जैसे कभी किसी की माँ अपने बच्चे को डांटते हुए कुछ भी बोल देती है, उतना सा अंश लेके हम कहें कि देखो ये कैसी माँ है, ये डांटती है फटकारती है। परंतु किस परिस्थिति में डांट रही है, किस परिस्थिति में धमका रही है, क्यों धमका रही है, ये हम लोग नहीं देखते। ऐसे ही वाल्मीकि जी महाराज यदि रामायण नहीं लिखते तो और रामायण लिखने वालों को दिशा ही नहीं मिलती। चाहे अध्यात्म रामायण को लिखने वाले वेदव्यास जी हों और चाहे तुलसीकृत रामायण को लिखने वाले तुलसीदास जी हों। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा, परंतु ये सब इनको मार्ग निर्देशन वाल्मीकि रामायण से मिला है। इसलिए वाल्मीकि रामायण हम लोगों के लिए बड़ा आदर्श है। दूसरी बात है कि वाल्मीकि रामायण के सुनने का बड़ा विचित्र अलौकिक गुप्त फल है। श्रीमद् भागवत की तो बड़ी प्रसिद्धि होती है, संभवतः श्रीमद् भागवत को तो हमारी हिंदू जनता ने शायद ही कोई रहा होगा जिसने आद्योपांत नहीं सुना हो, प्राय सुना है। परंतु वाल्मीकि रामायण को सुनने वाले बहुत कम है। इस कारण से इसकी बहुत महिमा है। कोई संतों की विशेष कृपा हो, भगवान की विशेष कृपा हो, तो ये वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलती है। तो चले आओ आप हम सभी, भगवान तो इस कथा को कर भी रहे और सुन भी रहे हैं। भगवान इस कथा को युद्ध कांड में, लंका कांड में कर रहे हैं और इस कथा को भगवान अयोध्या में सुन भी रहे हैं। तो अपने सब कथा को सुने या कथा को देखें, क्या करें? तो भाई अपने तो दोनों ही काम करें। महर्षि एक बात बताते थे कि एक बाबा जी भिक्षा के लिए गए तो वहां माई ने पूछा कि महाराज खिचड़ी लोगे कि रोटी लोगे, तो बाबा जी ने कहा कि रोटी पर खिचड़ी दे दो, दोनों ही चीज दे दो हमको। तो अपने लोग क्या करें कि कथा